آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری سعدیہ اسد ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں زبیر الطیب. تو آج کے پروگرام میں, آج ہمارا پروگرام بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق ہے, آج کی کہانی بھی اسی بارے میں ہے اور ہمارے مہمان بھی اسی کہانی سے متعلق ہیں. تو تفصیل اس کہانی کی آپ جنوری کے مہینے سے پڑھتے آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے خانہ بدوش, اس کا نام تھا آصفہ, جسے اغوا کر لیا گیا اور پھر زیادتی کے بعد بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا. اس واقعے پر کشمیر میں بے پناہ احتجاج ہوا جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا چرچا رہا. اور یہ وہی زمانہ تھا کہ اسے کچھ عرصے پہلے تک پاکستان میں زینب کے ریپ اور قتل کا واقعہ ہوا تھا اور ایک سلسلہ تھا جو کہ ابھر کے سامنے آ گیا تھا. تو بہت سی باتیں مماثل ہیں ان دونوں واقعات میں بھی, خاص طور پہ جو پروٹیسٹ ہے اس بارے میں, کیونکہ دونوں واقعات میں ایسا ہوا کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ انہیں انصاف نہیں مل رہا, لیکن سوشل میڈیا نے انہیں انصاف دلایا. تو ہم نے آج ایک مہمان کو مدعو کیا ہے اس پروگرام کے لیے, ارون کمار جوشی صاحب کو, جو کہ جموں سے ہمارے ساتھ ہیں, ٹریبیون کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اور ایک ممتاز صحافی ہیں. آداب ارون صاحب.
آداب جی.
بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. ظاہر ہے کہ آپ کو تو میں کیا اس واقعے کے بارے میں تفصیل بتاؤں گی, آپ کے تو علاقے سے ہوا ہے اور اسی علاقے کے ایک گاؤں سے یہ واقعہ ہوا ہے. تو کیوں نہ پہلے ہم کہانی سن لیں. اختر صاحب ہیں اس بچی کے والد اور وہ کہانی سنا رہے ہیں اپنی بچی کی زندگی کی, تو ہم وہ کہانی سنتے ہیں اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بات کریں ہمارے سامعین سے اس بارے میں.
میرا نام محمد اختر ہے, میرے والد صاحب کا نام حاجی قاسم ہے, ہم یہ ڈسٹرکٹ سانبا میں رہتے ہیں, گاؤں کا نام ہے نندری, پیشہ یہی ہے بکروالوں کا. یہ ہم 6 مہینے یہاں پہ رہتے ہیں جموں میں, 6 مہینے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں ورمان کے علاقے, جیسے کرگل کے علاقے میں رام دوم سائڈ ہے اس چلے جاتے ہیں, 6 مہینے وہاں پہ رہتے ہیں, اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. اگلے مہینے جو اپریل میں مہینے میں نکل جائیں گے, یہاں گرمی زیادہ ہو جائے گی پھر ہم چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا مال مویشی ہے, جو زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ رک نہیں سکتا ہے. ہماری بچی 7 دن اس کو کس طرح رکھا, اس کو بے رحمی سے قتل کیا گیا, تو ابھی ہم کو کیا خطرہ ہے. میرا ایک سب سے ان کا لڑکا ہے بڑا, اس کا نام ہے عمران, اس سے چھوٹی ہیں, 3 لڑکی ہیں, ایک لڑکی میری پڑھتی ہے, اس سے چھوٹی ایک اور, وہ پڑھتی نہیں ہے اس گھر میں, اس سے چھوٹی تھی آصفہ. وہ جب 1 سال کی تھی, 1.5 سال کی تھی, تو اس کے شبھ نام لڑکا جو میرا سالہ ہے, میری وائف گھر والی کا بھائی ہے, اس نے ماں اپنی بہن سے کہ میرے پاس میری بچی ہے, میرے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک گاڑی میں, اس کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ کافی پریشان نظر پریشان سا ہوتا تھا, روتا رہتا تھا. تو ہر کسی سے اس نے بولا کہ میرے گھر میں بچے نہیں ہیں, مجھے دکھی ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہوں, مجھے کوئی رونک نہیں آ رہی ہے. تو اپنی بلادری میں اور کسی سے مانگا تھا لیکن اس کو کسی نے نہیں دیا. تو بہن سے مانگا تو بہن نے بولا چلو دے دیتے ہیں اس کو کچھ مہینوں یا سال کے لیے. تو پھر ہم نے آصفہ کو اس کو دے دیا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے واپس لایا تھا. پھر 1.5 مہینے کے بعد وہ کافی پریشان سا نظر آ رہا تھا, ٹینشن سی ہو گئی تھی اس کو, تو دوائی شوائی کھانے لگا. پھر ہم نے اس کو واپس دے دی, ہم نے بولا چلو رکھ لو سال بعد جو مان لو. اس نے وہاں پہ تھی تو ہم کیا کہوں, ابھی اس کے بیان نہیں کر سکتا میں. اتنی آصفہ خلاق اور ہوشیار بچی تھی, آج دوسرے بچے نہیں ہیں میرے ایسے, شروع تھی اس کے پیچھے چھوڑتے ہی نہیں تھا اس کو. میں نے ایک بار واپس بھی لائی تھی, میں نے جو اس کا دادا جی ہے وہ بہت رو رہا تھا جب اس کو دیا تھا, اس نے واپس لے آیا تھا اس کو واپس, جو کہنے لگا کہ نہیں اس کو نہیں دوں گا میں, اگر میرے فادر والد صاحب نے بولا تو. پھر وہ رونے لگے, پریشان سے نظر آنے لگے, تو ہم نے پھر واپس دے دی تھی. تو باتوں سے اس کو ایسے لگتا تھا کہ یہ کچھ بنے گی, جس طرح کی اس کی باتیں تھی, جس طرح کی وہ 8 سال کی بچی تھی میم, وہ اتنی چلاک ہو, 4 سال کے بچے جو ہوتے ہیں 7-8 سال کے آلریڈی وہ کھیلتے کودنے میں زیادہ کھوئے رہتے ہیں, لیکن اس کا کھیلنے بولنے میں نہیں اتنا تھا, وہ کافی اور حساب سے رہتی تھی, وہ اپنے کام سے زیادہ رکھتی تھی, اچھی اچھی باتیں کرتی رہتی تھی. جب بھی وہ آتے تھے اس کو تو ہمیشہ یہ پوچھتی رہتی تھی مجھے, یہ اسکول میں کیا ہوتا ہے, اسکول میں جب پڑھتے ہیں تو پڑھ کے کیا کرتے ہیں. بس ایسی ایسی باتیں کرتی رہتی تھی ہمیشہ. بولتی تھی پاپا, ایک بار اس سال کی بات بولوں میں, اسی سال کی روم دوم کی, کہ مجھے بولنے لگی کہ ہم مجھے ایک چھوٹی سی کھلونا گاڑی لے کر آؤ. میں نے بولا گاڑی کو آپ کیا کرو گے آپ وہ دو. بولنے کی نہیں مجھے شوق ہے, میں گاڑی میں بھی گاڑی چلاؤں گی. اس طرح کی اس کے شوق تھے, اس طرح کی اس کی باتیں تھی. مجھے بھی کتاب لا کر دو, میں بھی پڑھوں گی. مجھے ہم کو اتنا نہیں, ہم بکروال لوگ اتنا کیریئر نہیں کرتے بچوں کے بارے میں, غریب لوگ ہیں ہم, تو اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کل کیا ہوگا آج کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارا یہ ماحول مویشی یہی کام کر رہا ہے, ہمارے بچے بھی یہی کر رہے ہیں. ہمیں اتنی سکھایا نہیں جاتا, جو پڑھتے ہیں ان کو نوکری نہیں دی جاتی ہے. کافی ادھر ادھر لڑکے بہت پڑھے ہوئے ہیں, ان کو بھی نوکری نہیں مل رہی ہے. یہی کام کرتے ہیں, پڑھ لکھ رہا. ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں پڑھ کے کیا کرو گے, یہ بھیڑ بکریاں چراؤ, جب نوکری نہیں ملتی تو کیا کرو گے اتنے سال یہاں پڑھ کے. اس لیے ہم لوگ خیال نہیں رکھتے اپنے بچوں کا بھی. ہمارا کو نہیں رکھا تھا, اس لیے ہم کو کچھ نہیں کچھ نہیں سکھایا, تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے. بات یہ ہے, ماموں بہت کرتا تھا, ماموں کرتا تھا, اس کے ساتھ پیار بہت کرتا تھا, اس لیے اس کو چھوڑتا بھی نہیں تھا. ہم جب بھی اس کو بولتے تھے نہیں ہم اپنی صفا کو واپس لائیں گے, تو بولنے کا نہیں نہیں کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ دو مجھے پاس, کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو, پھر لے جانا. ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے, اکیلا ہوں. ہم رات کو آتے ہیں جب گھر میں تو اچھی باتیں یادیں کرتی ہے وہ ادھر ادھر چھوٹی بچی, جو ان کے گھر میں بہت پریشانی بھی نظر آتا, پریشان نظر آتا تھا وہ زیادہ تھا. اس لیے وہ جب وہ نیچے گاؤں میں کہتے ہیں کہ گاؤں میں آتی جاتی رہتی تھی, وہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی. تو وہاں پہ جب وہ گئی تو ہمارے پشو ہوتے ہیں گھوڑے جس کو بولتے ہیں, تو گھوڑوں کے پیچھے کافی گئی اپنے پشوؤں کے لیے گئی. تو ٹائم کافی 2 بجے کا ٹائم تھا, 2:30-4 بجے کا ٹائم تھا. تو گاؤں میں گئی تو گاؤں سے پھر واپس نہیں آئی. پھر ہم شام کو جب انہوں نے دیکھا کہ صفا واپس نہیں آئی ہے, کافی ادھر ادھر فون بھی کیا, ادھر ادھر ڈھونڈا چھونڈا, کافی سرچ کیا تو نہیں ملا. پھر صبح جب ہم کو فون کیا تو ہم بھی یہاں سے وہاں گئے, ہم سے کوئی 15 کلومیٹر دور ہے وہ. تو وہاں پہ ہم گئے تو کافی ہم نے ڈھونڈا چھونڈا. پھر ہم نے سر درد دکھائی تھی ادھر ہیرا نگر تھانے میں, پولیس لے جائی, سرچ کیا اور کوئی پتہ نہیں لگا. وہ بولنے لگے کہ ہم نے سوچا پتہ نہیں ہو کیا گیا کیسا, پہلی بار یہ جے اینڈ کے میں ایسا کام ہوا ہے, بچہ ہماری مطلب ہمارے خاندان میں ایسا کام ہوا ہے پہلی بار, یہ بچہ گم ہو گیا. ہم کو آج تک کافی کل ہم یہاں سے نان جاتے ہیں, یہاں سے کرگل تک, تو کرگل سے یہاں تک آتے ہیں. کافی راستے میں کافی گہرا راستہ ہوتا ہے, دریا ہوتے ہیں, ریون کے دریا ہوتے ہیں, کافی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں. ہم اتنا کیریئر نہیں کرتے ہیں, اتنے بھی سوچتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا, لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہماری بچی کو کسی نے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ اتنا زیادتی کی, اس کے ساتھ اتنا اس کو ٹارچر کیا, اس کو کرنٹ بھی دیا. میم ہم نے دیکھا جب اس کی ڈیڈ باڈی کو, بہت بری طرح اس کو مارا. میں بیان نہیں کر سکتا, دیکھ نہیں سکتا تھا ہمارا جیسا آدمی, کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے سر کی اتنا کیا کیا اس بچی کا, اس نے بچی نے اس کا کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا, اس طرح انہوں نے اس کو مارا. وہ جو رسانہ گاؤں ہے اس کی بغل میں ملی تھی, کسی جنگل اسی پاس ہی کی جنگل میں ملی تھی, اسے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد جب بچی کو صبح ملی تو ہمیں پتہ لگا, تو ہم اسے لے کر کٹھوا اسے ہاسپٹل میں لے گئے میڈیکل میں. وہاں سے واپس آئے تو اسٹرائک کیا, تو اور ہم نے ہڑتال منائی. تو اس کے بعد پھر پولیس نے صبح کیا, ڈاگ اسمیل کرائی, مطلب کتے چھوڑا اس نے پکڑا, اس کی وجہ سے انہوں نے اس قاتل کو پکڑا, ایک کو پکڑا. پھر انہوں نے میم وہ ان کو چھپا لیا تھا, بول رہے تھے کہ یہ نابالغ لڑکا ہے, 15 سال کا لڑکا ہے. پھر اس کے بعد کیس کرائم برانچ کو دیا گیا, پھر اس نے کی تھی کاروائی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے نکالا گیا. پھر اس کے بعد دیپک کھجوریا نام, ہم جانتے ہوئے نہیں ہے کوئی پولیس والا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ملا تھا. 3-4 پکڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم کو ابھی تک اس بات کا نہیں پتا کہ اصلی قاتل کون ہے. جو سب سے پہلے لڑکا پکڑا تھا جو کہتے تھے 15 سال کا لڑکا ہے, جو ابھی سننے میں آیا کہنے لگا کہ اسی نے اس کا اسی کو لڑکی کو مارا ہے, اسی نے پکڑا اغوا کیا تھا, وہ اسی نے مارا, یہی لڑکا ہے. پھر اس کے بعد وہ 15 سال کا ہم نہیں نکلا, کورٹ میں جب پیش کیا گیا تھا مجھے پتا نہیں لگ رہا تھا. مجھے ابھی تو کافی دوائی شوائی بھی لا کر دی مجھے, تو تھوڑا دماغ میں تھوڑا کنٹرول ہے, تھوڑی کچھ دن ہو گیا میں تھوڑا ٹھیک ہوں. تو آصفہ کی جو ممی ہے تو وہ ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں ہے وہ بات کرنے کی ہوش نہیں ہے, کافی چپ چپ سے رہتی ہے, ایسی پریشان سی رہتی ہے. ہم ادھر ادھر لڑکیاں ادھر ادھر آتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, بولتی ہیں, ہوتا ہے تو نہیں, وہ کچھ چپ چپ رہتی ہے. پتہ نہیں کیا دل میں دماغ میں پریشانی سی کھائی ہوئی ہے. سب کے بچے ہوتے ہیں, ہم نہیں کہتے میم جی کہ ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے یا کوئی اور برادری کا ہے, قوم کا ہے. सबके बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या कसूर है मैम, उसका क्या कसूर था, उसके साथ इस तरह किया, उसको मारा था, आप बोल रहे हैं कि उनको छोड़ा चाहे उनको, तो उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, ये तो हो गया मैम कि हम गरीब है हमारा कौन सुनता है, अगर किसी अमीर की बेटी होती, किसी मिनिस्टर की बेटी होती तो आज तक काफी कब से मैम उनको सजा दी होती, तो लेकिन वो लोग को नहीं, काफी जुलूस निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी एक बार तिरंगा लेकर उसने पूरा स्ट्राइक किया कि उनको ये निर्दोष है, इनको छोड़ा जाएगा इनको, या सीबीआई वहां भी बोल रहे थे कि उनकी सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए, हमारी बच्ची थी, सबकी बच्ची, आपकी भी बच्चे हैं, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी इस्तीफा का इंसाफ दिला दो, नहीं हमारा इन इलाकों में हमारा जीना आराम है, बिल्कुल क्या है, हमारी छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, तो कल किसी और के साथ होगा तो क्या कर लेंगे हम, बस मेरी साथ लास्ट गुजारिश यही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, जो कुछ भी हम शुक्रगुजार हैं अभी उस तालिब का जी, और जितना जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, बहुत कुछ किया उसने हमारे लिए।
तो अरुण कुमार जोशी साहब, आपने कहानी सुनी, और जैसे कि किसी बाप की भी गम अपनी जगह है, लेकिन एक इंसाफ की ख्वाहिश होती है, और उन्होंने बीच में किसी जगह जिक्र किया कि उनके कबीले में ये पहली दफा ऐसा वाकया हुआ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आमतौर से इस तरह के वाकयात नहीं होते जम्मू कश्मीर में, ये बहुत ही रेयर होने वाले वाकयात में से एक है।
देखिए, जहाँ तक कठुआ जिले का ताल्लुक है और बाकी जम्मू रीजन का ताल्लुक है, यहाँ पे ऐसे वाकयात नहीं होते, वाकयात होते भी हैं तो उसमें कई बार इंसेस्ट का होता है, कई बार टीचर स्टूडेंट्स का हो जाता है उसमें बड़े, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कबीले की लड़की को, छोटी सी माने 8 साल की बच्ची को के साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी है, सानिया है, और हम समझते हैं कि जहाँ तक एक बाप की कहानी है, कोई भी बाप हो, जिसकी भी बेटी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी कबीले से है या किसी कम्युनिटी से है, उसके साथ जो हुआ उसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इंसाफ में दो बातें आ गई, सबसे बड़ी जो गलती की गई वो कठुआ पुलिस ने की है, कठुआ पुलिस ने इस केस को शुरू से ही सीरियसली नहीं लिया, और ना क्राइम स्पॉट को ढूंढने की कोशिश की, ना क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश की, और उसकी वजह से ये बच्ची जो है 8 दिन तक इसका कुछ पता नहीं चला, और जब पता चला तो बहुत ही बुरे हालात में ये पाई गई। अब ये फॉरेंसिक में रिपोर्ट गई है, और ये शुरू में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इसकी जांच की मांग की कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसको एक कॉमनल कलर दिया गया और प्रेशर डाला गया, तो उससे ये लग रहा है इनको कि भी शायद कम्युनिटी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। हालांकि जहां तक अब ये क्राइम और क्रिमिनल का ताल्लुक ही नहीं रहा, क्राइम और क्रिमिनल तक अगर बात रहती, जो पुलिस का काम था, जो उसको करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। अब ये रंगत ले चुकी है जहां से बीजेपी के मिनिस्टर्स जाते हैं, वहां पे रैली करते हैं, और उनको, हिंदुओं को ये कहते हैं कि भैया आपकी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग है, हम इसको मनवा के रहेंगे, वहां से पीडीपी के मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं और उनका बीजेपी वालों को एक किस्म की तोहमत लगाते हैं कि आप रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो। तो अभी तक प्रॉब्लम यह है कि जांच जो है, इंक्वायरी जो है, वो अब कम्युनल कलर ले चुकी है, क्योंकि जो ऐसा जो टीम बनाई इन्होंने क्राइम ब्रांच की, उसमें भी जो एजिटेट कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए, वो पॉइंट कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी के 4 लोग हैं, जबकि 5 की टोटल टीम है और एक कम्युनिटी के 4 लोग हैं, तो वो शक अपना जाहिर कर रहे हैं, और ये भी बात हो सकती है कि वो अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये कैंपेन चलाई जा रही, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, उसमें जो असली मुद्दा है कि क्राइम हुआ है और क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए, उनको हैंग कर दिया जाए, जैसे जैनब के कातिल को, रेपिस्ट को, उन्होंने 4
अकाउंट पे डेथ पेनल्टी दी है, वैसी ही पेनल्टी यहाँ होनी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी का नाम हिंदू हिंदू नाम है या मुस्लिम नाम, लेकिन ये कहना कि भाई अब ये निर्दोष है, ये इनोसेंट है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्लो ढंग से चल रही है, जिससे अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि यही गिल्टी है। उनके पास सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है और कन्फेशनल स्टेटमेंट को एविडेंस तब तक नहीं माना जाता जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट ना आए। फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक इनके पास पूरी तरह से आई नहीं। तो ये मामला हिंदू और मुस्लिम हो गया कि रेपिस्ट जो थे वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, तो थे कौन?
असल में इसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक रुख है इस पूरे मामले का वो यही है। मैं एक दफ़ा अपने सुनने वालों को बता दूं जिन्होंने प्रोग्राम सुनना शुरू किया, साथ ही ये भी कि आप हमारी फेसबुक पर आके बराह रास्त ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उनके जवाब भी दूंगी। आपने फेसबुक पर कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हुए हैं, सरफराज मलिक, मुंतजर एजाज, खलील अब्बासी, बशीर खान, ये कश्मीर यानी इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से सुन रहे हैं, जहांगीर लोन भी और सरफराज मलिक। तो नायाब ने भी अपना तबसरा किया और खलील अब्बासी ने लिखा है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा सही कमेंट है। मैं हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार जोशी साहब जो ट्रिब्यून के रेजिडेंट एडिटर हैं जम्मू में, और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं अरुण साहब, बता दूँ आपको, तालिब हुसैन। सोशल मीडिया की और एक्टिविज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो तालिब ने इसमें शुरू से रोल अदा किया है, क्यों ना मैं छोटे सा, मैंने इनकी भी रिकॉर्डिंग की है इनसे, इनको लाइव लेने से पहले पहले मैं वो सुनवाती हूँ। उसमें बहुत सी बातें जो अभी अरुण कुमार जोशी साहब कह रहे थे वो उसी की बाजगश्त भी मिलती है और कुछ का जवाब भी।
जब उसकी लाश नहीं मिली थी तो दो चार दिन पहले वहाँ पे एक शादी थी हमारी बिरादरी में आसिफा के रिश्तेदारों में, तो मुझे भी दावत थी, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे साथ ये तस्करा हुआ। तो मैंने वक्त के जो एसएसपी कठुआ थे उनसे बात की, उनसे कहा, और फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत वो उसके फोटो वायरल किए। तो जब वापस जम्मू आया तो दो दिन बाद मुझे खबर मिली कि बच्ची की डेड बॉडी मिली है। तो फिर वापस जाके उस दिन से लेके आज तक उस मसले में सफे अव्वल के सिपाहियों की हैसियत से हम शामिल हैं। केस जो है बड़ा इसको अलग तरीके का रंग दे दिया गया हुआ है। जब जैनब का मसला हुआ तो तभी बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया ने, लेकिन पाकिस्तान ने जैनब के मसले में 22,000 लोगों का डीएनए टेस्ट करवा के और वो जो वहशी दरिंदा था उसको किस तरह से उसको सजा दी। लेकिन हम भी चाहते थे कि जिस तरह से जैनब के साथ हुआ, जैनब को जिस तरह से हक दिया गया, उसी तरह से ये जो नेशनल न्यूज चैनल कल तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे जैनब की सपोर्ट कर रहे थे। निर्भया एक मामला हुआ यहाँ पे, दामिनी का मामला हुआ हिंदुस्तान के अंदर, पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, हिंदुस्तान की सोशल ये मूवमेंट्स, रिलीजियस तंजीमें सारी की सारी, और फिर सिविल सोसाइटी जो है, हिंदुस्तान पूरा उबल पड़ा। और इनफैक्ट हम भी, मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, हमने भी बेशुमार प्रोटेस्ट किए निर्भया और दामिनी के केस में कि उनको इस तरह की इबरतनाक सजा मिले कि ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाका ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आसिफा जैसे मामला सामने आया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जिस तरह की यहाँ पे आज सियासत चल रही है मुल्क के अंदर, तो मतलब आसिफा के साथ हुआ वो 7 साल की बच्ची थी जिसने अभी अपने दूध के दांत भी नहीं तोड़े। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि माँ सिवाय एक दो न्यूज चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को छोड़ के, बाकी किसी एक न्यूज चैनल ने भी रिपोर्टिंग नहीं की इसमें। और बदकिस्मती यह है कि पहले हम जब कर रहे थे कि आसिफा के इन मुलजिमान को अरेस्ट किया जाए, तो पहले तो इन्होंने एक ड्रामा रचा कि जनाब 15 साल का बच्चा है, उसने ये सब किया है, कि एक सिट बनी पहले दिन जब 17 तारीख को हमने जनाजा नेशनल हाईवे पे रखा, हमने एक एहतजाज किया और वहां के इंतजामिया मौका पे आई, इंतजामिया ने 24 घंटे का वक्त दिया हमें, 24 घंटे का वक्त लिया हमसे और कहा कि हम इनको अरेस्ट गिरफ्तार करते हैं। तो 24 घंटे नहीं, मतलब 48 घंटे के अंदर इन्होंने एक ड्रामा रचा और ये कह दिया कि जनाब एक 15 साल का लड़का हमने अरेस्ट किया, उसने ये सब किया है। उस पर फिर से हम बिगड़ गए और कुछ मजबूत बुनियादी जो सच थे उनकी बुनियाद पे हमने एक पुलिस वाले का नाम जो है वो जाहिर किया कि दीपू खजूरिया जो है इस पूरे मसले के अंदर हमें जो लग रहा है वो है, आपको उससे पूछताछ करनी चाहिए। तो इस पे पुलिस जो थी, इंतजामिया थी, बिगड़ गई। फिर उसके बाद चहारम हुआ जब आसिफा का, और चहारम पे हमने ये एहतजाज किया, उसमें लीड मैं ही कर रहा था, और फिर शाम को हम पे लाठी चार्ज हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मुझे लेके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया 24 घंटों के लिए। और फिर उसके बाद चूंकि असेंबली का यहाँ पे सेशन चल रहा था, तो असेंबली में कुछ जो हस्पे इख्तलाफ के अरकान थे उन्होंने शोरों को गा किया, तो बहरहाल मैं बच गया। तो अब मैं जब बाहर आया, फिर से हमने प्रोटेस्ट किए, फिर से हम हंगर स्ट्राइक पे गए और हंगर भूख हड़ताल फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे, और फिर जाके दीपू को अरेस्ट किया। और तीसरी सिट बनी, जो तहकीकाती कमेटी जो थी, पहली कठुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बनी, दूसरी भी उन्हीं की बनी, और तीसरी क्राइम को बनी, क्राइम ने, और हमने इनकार किया कि पुलिस से हमें यकीन नहीं है, जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। आखिर में जब जुडिशियल प्रोब भी नहीं हुई, तो फिर हम अपने बिहाफ पे जो है कोर्ट में गए और कोर्ट से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। आज के वक्त में ये जो तहकीकाती कमेटी जो है, जिसने दो चार लोगों को उठाया हुआ है, ये जो काबिले इज्जत हमारा हाई कोर्ट है यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर का, वो उसको मॉनिटर कर रहा है, और हर हफ्ते जो है उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है कि भाई आपने क्या इसमें पेश रफ्त। जिस दिन मैं अरेस्ट था, इनफैक्ट उस दिन भी जम्मू यूनिवर्सिटी, जो कि इसमें जिसमें मेजोरिटी हिंदू बच्चों की है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा एहतजाज किया, और मुसलसल एक कंपेन चलाई हुई है आर एस पुरा के अंदर, ये हमारा बॉर्डर एरिया है जहाँ, तो वहां पे एक नो मोर आसिफा नाम से एक कंपेन चलाई है, जिसमें एक भी उस कंपेन चलाने वालों में से एक भी मुसलमान नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं, और वो एक्टिविस्ट है, मानिक है, प्रमोद भैया है, सतीश भैया है दयाला चक से, सतीश शर्मा इनफैक्ट शर्मा है, और वो सरपंच है एक इलाके के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े हैं, आईडी खजूरिया साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस केस के अंदर जो केस की केस को जो लड़ रही है वो एक लेडी है, और वो एक कश्मीरी पंडित ब्राह्मण है, दीपिका ठुसू। आज भी हमारा ये जो मसला है आसिफा का, जहां तक पहुंचा ये थ्रू सोशल मीडिया ही थोड़ा बहुत पहुंचा है, क्योंकि मीडिया ने तो हमें सपोर्ट किया ही नहीं। सतीश बहुत अच्छे से है, मतलब हम सेटिस्फाइड है, मुतमिन है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की सुपरविजन है, और 9 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद, कोर्ट के अंदर फिर से एक समाअत है, उसमें जो नई स्टेटस रिपोर्ट आएगी उसमें हम देखते हैं कि तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। फिलहाल जो है तहकीकात हमें मुतमिन कर पाई है, और अच्छा। आगे भी समझते हैं कि अगर यही तहकीकात ऑनरेबल हाई कोर्ट की सुपरविजन में ही चलती रही तो ठीक रहेगा।
तो जोशी साहब, आप अब बताइए कि ये जो मुतालबा है कि ये यहाँ से हटाकर ये जो मुकदमा है वो सीबीआई में चलाया जाए, तो किस हद तक इम्कान आपको नजर आते हैं कि ऐसा होगा?
इसमें सियासत ज्यादा है, इसमें जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि ये दो कोलिशन पार्टनर्स की आपस में चल रही है और इसको कॉमनल कलर दे दिया गया है। दूसरी बात ये है कि ये सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करना कोई नई बात नहीं है। अगर हमें याद हो तो 2009 में शोपियां में रेप एंड मर्डर केस हुआ था नीलोफर को और आशिया का, वहां पे तो तब भी पुलिस की जो कार्रवाई थी उस पर कोई मुतमईन नहीं था। उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी, उससे शुरू में ही जुडिशियल इंक्वायरी हुई, उस पर भी कोई नतीजा नहीं निकला था। बाद में एक सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट दी, और सियासी हालात यहाँ पे ऐसे हैं और कॉमन कलर, हालांकि वहां पे तो विक्टिम्स भी मुस्लिम थी और जो पुलिस थी वो भी उसी कम्युनिटी से थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सीबीआई की इंक्वायरी को पब्लिसाइज किया जाए और उसको बताया जाए कि सीबीआई ने ये इंक्वायरी दी है। उसका केस भी जो है हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा था, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह से अब ये मुतमईन है, दूसरी साइड मुतमईन नहीं है। ये जरूरी है, ऐसे हालात में हो जाता है, लेकिन जिस तरह से तिरंगा निकाला गया, तिरंगे की यात्रा निकाली गई, वो और जो हिंदू एकता मंच का नाम दिया गया वो गलत है, और इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे कि जो क्रिमिनल है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो निर्भय का केस हो, चाहे वो दामनी का हो, चाहे वो जैनब का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो बाकी उनको सबक सिखाए।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ नहीं, पहले आप प्रॉब्लम बताइए क्या है, क्योंकि यही है असल बात जिस पर बात करनी जरूरी है। जी,
ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसको कॉमनल कलर दे दिया गया है। अब मामला ये नहीं है कि क्रिमिनल वो दीपक खजूरिया है या वो 15 साल का बच्चा है या कोई और है।
अब प्रॉब्लम यह हो गई है कि अगर उनको सजा मिलती है और अगर वो हैं भी, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो है, अभी तक केस चार्जशीट हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं, उनको हैंग कर दीजिए इफ दे आर कल्प्रिट्स, बट आप उसको कमल कलर दे रहे हैं, आपने उनको पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो कल्प्रिट्स हैं, हालांकि अभी तक कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं करा। और दूसरी तरफ से जो हिंदू हैं वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराइए, इंक्वायरी वो भी मांग रहे हैं, इंक्वायरी ये भी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसमें कम्युनल कलर है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दीपक खजूरिया कन्विक्ट होता है तो अब वो दीपक खजूरिया कन्विक्ट नहीं होता है, वो हिंदू कम्युनिटी समझेगी कि उनको कन्विक्ट किया गया, उनकी उनको बदनाम कर दिया गया। उसी तरह से अगर दीपक खजूरिया सेट फ्री हो जाता है तो मुस्लिम कम्युनिटी अपने ढंग से सोचती है। तो प्रॉब्लम कम्युनलिज्म की है, प्रॉब्लम बाकी कोई नहीं। अगर क्राइम और क्रिमिनल तक इसका मामला रखा जाता और पनिशमेंट तक रखा जाता तो वो ठीक था। इसमें सारी वो कठुआ पुलिस से स्टार्ट होती है और वहीं पे खत्म होती है।
अच्छा, मैं ये बात पूछूंगी आपसे जो तालिब ने उठाई थी बात, लेकिन पहले मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ। हमारे साथ जो मौजूद हैं सर लोग, मलिक अमीर बख्श हैं और दार मकसूद हैं, वारिस अहमद, इन सरफराज मलिक, नायाब नायाब, इन सब ने दुआ की है वालिद के लिए कि खुदा इनके ख़ानदान को सब्र दे। और इनमें से कई लोगों ने ये सवाल पूछे हैं कि क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और शौकत कादरी ने शाहपुर ने लिखा है कि मुलजमान का दिफा करना दरिंदगी की बदतरीन मिसाल है और जैनब की तरह आसवा के कातलों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक अजीब सी बात है कि एक ऐसा वाकया जो पाकिस्तान में हुआ वो इत्तेफाक से कुछ वक्त ऐसा हुआ कि दोनों को मिलाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने भी उस ज़माने में हिंदुस्तान के चैनल्स भी सुनती थी और अखबारात भी देख रही थी, तो ये सच है कि मीडिया ने जैनब को बहुत ज़्यादा कवरेज दी, लेकिन तालिब ने शिकायत की है कि मीडिया इस तरह आसवा को नहीं दे रहा जगह। तो आपका क्योंकि खुद ताल्लुक है मीडिया से, तो जोशी साहब ऐसा क्यों क्यों इसको प्रेस में उस तरह नहीं उठाया गया जैसे दूसरे मामला?
देखिए, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कि मीडिया ने इस केस को उस तरह से नहीं लिया जैसे जैनब या निर्भय के केस को लिया था
जी।
और उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक तबका ऐसा है मीडिया का जिसने इसको शुरू से ही कम्युनल कलर दे दिया, और दूसरी कम्युनिटी ने सोचा कि अगर हम भी इस मसले को उछालते हैं तो ये एक कम्युनिटी का वर्जन को ऑथेंटिसिटी देना हो जाएगा। ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन ये है और इसको शुरू से ही कम्युनल कलर दिया गया कि एक मुस्लिम लड़की के साथ ये ज्यादती हुई, मर्डर हुआ, तो इसलिए हिंदू चुप हैं। हालांकि बात ये थी कि हिंदू साथ में थे, वो बाद में अलग हुए हैं इससे, और अभी भी जैसे तालिब कह रहे थे कि कुछ हिंदू लोग अभी भी उनके साथ हैं, साथ खड़े हैं
जी। हाँ, बिल्कुल।
तो ये इसको जो कम्युनल कलर दिया गया शुरू से ही, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये कठुआ पुलिस की नालायकी है।
दुरुस्त, लेकिन असल में तो फिर आखिर में बात यही है कि आसफा का क्या होगा, एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई भी कसूर नहीं
था। इंसाफ मिलना चाहिए,
बिल्कुल
इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी ढंग से मिले, चाहे वो जो क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी चल रही है जिसको हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा है उससे मिले या किसी और इंक्वायरी से मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। और जो कल्पित हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो,
सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जोशी साहब, क्योंकि ये केस अभी जारी है और अभी अगली समाअत 9 तारीख को है, तो मैं आइंदा भी आपको ज़हमत दूंगी और इस केस से मुतालिक और भी बहुत से लोगों को, तालिब को और उनके साथ काम करने वालों को। तो इसके साथ ही इजाज़त भी दीजिए शहनाज अजीज को, हमारी प्रोड्यूसर सादिया सती, हम सब की जानिब से खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।